ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रदेश नंबर दो के नामकरण के विषय में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी द्वारा रखे गए प्रस्ताव भी हुए अस्वीकृत। नेपाल एन संशोधन विधेयक 2075 को राष्ट्रीय सभा द्वारा किया गया सर्वसम्मति से पारित। दैनिक उपभोग्य वस्तुओं की सहज आपूर्ति के लिए सहूलियत दुकानें सरकार द्वारा की जाएगी संचालित। और इटली में कोरोना का कहर जारी, हजारों की तादाद में वायरस के संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर दो की प्रदेश सभा की बैठक में प्रदेश के नामकरण संबंधी प्रस्ताव में मतदान संपन्न हुआ है। बैठक में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी और राजपा द्वारा संयुक्त रूप में रखे गए मध्य प्रदेश के प्रस्ताव के पक्ष में 60 और विपक्ष में 46 और एक मत बदर हुआ था। इससे पहले नेकपा द्वारा प्रस्तावित जानकी प्रदेश और नेपाली कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित मिथिला भोजपुरा को अस्वीकृत किया गया था। दोनों प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने के पश्चात मतदान शुरू किया गया। नेकपा के प्रस्ताव पर 37 और विपक्ष में प्रस्ताव को 70 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह नेपाली कांग्रेस के मिथिला भोजपुरा के पक्ष में 28 और विपक्ष में 79 मत प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने शिक्षा संबंधी कुछ नेपाल एन संशोधन करने के लिए विधेयक 2075 को सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री डॉ शिवमाया तुम्बा हाम्फे द्वारा प्रस्तुत निर्माण प्रमाण दूसरा संशोधन विधेयक 2075 पर विचार विमर्श किए जाने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे पहले बैठक के शून्य समय में सांसदों ने कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की घोषणा करने के बावजूद अब तक पुरस्कार न दिए जाने पर भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया गया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक चैत 6 गते दोपहर 1 बजे बैठेगी। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति में बीमा संबंधी कानून के संशोधन और एकीकरण के लिए बने विधेयक 2075 पर धारागत विचार विमर्श जारी है। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने बताया कि बीमा संबंधी नियामक निकायों को सुदृढ़ बनाने और बीमा प्राधिकरण को सशक्त निकायों के रूप में स्थापना किए जाने की परिकल्पना विधेयक द्वारा किया गया है। बैठक में बीमा बाजार विस्तार, पुनर्बीमा, पूंजी बाजार प्रबंधन, बीमा करार, बीमा शुल्क, बीमा कार्य क्षेत्र का बाड़फाड़, खुद संपत्ति के आधार पर जोखिम स्वीकार आदि व्यवस्था के विषय में विचार विमर्श किया गया। उद्योग वाणिज्य तथा मंत्री लेखराज भट्ट ने बताया कि दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति को सहज बनाने के लिए सरकार स्वयं ऐसी दुकानों का संचालन करेगी जहां सभी सामान सहूलियत दरों पर सरकार मुहैया कराएगी। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत रहे उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज हुई बैठक में मंत्री भट्ट ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कालाबाजारी करने वालों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंडकी प्रदेश की राजधानी पोखरा लेकसाइड में कोरोना वायरस के मद्देनजर विशेष सतर्कता अपनाई गई है। आंतरिक तथा बाह्य पर्यटकों के मद्देनजर पोखरा महानगर पालिका ने पर्यटकीय क्षेत्रों लेकसाइड बाराही चौक में डेस्क स्थापना किया है। इससे पहले पोखरा महानगर द्वारा पोखरा विमानस्थल में भी हेल्थ डेस्क की स्थापना किया था। बर्दिया जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण न आने देने के लिए 15 दिनों तक जिला के सभी हाट बाजार बंद करने, भारत और नेपाल के नागरिकों को सुरक्षाकर्मी के स्वीकृति मात्र देने के निर्णय किए गए थे, ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय बर्दिया ने दी। कोरोना के संक्रमण फैलने न देने के लिए संभव होने वाले सभी उपाय अपनाते हुए उच्च सतर्कता अपनाने के निर्णय किया गया, ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित चितवन प्रदर्शनी केन्द्र में भरतपुर कोरोना विशेष अस्पताल को संचालित किया जाएगा। आज भरतपुर महानगरपालिका के पहल में चितवन में संपन्न सरोकार वाला को बैठक से 70 सैया के अस्पताल तत्काल निर्माण करने के निर्णय किया गया है। बैठक से महानगरपालिका प्रमुख रेणु दहाल के संयोजकत्व में 15 सदस्यीय कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण पूर्व तैयारी कार्यदल भी गठन किया गया है। विश्वव्यापी महामारी बने कोरोना वायरस विरुद्ध पूर्व तैयारी अपनाते हुए बांके में कार्यदल का गठन किया गया है। आज नेपालगंज उपमहानगरपालिका के आयोजना में हुए सरकार पक्ष के समन्वयात्मक बैठक से प्रमुख जिला अधिकारी कुमार बहादुर खड़का के संयोजकत्व में कार्यदल और व्यवस्थापन समिति किया गया है। बैठक में कोरोना वायरस विरुद्ध पूर्व तैयारी के लिए आकस्मिक कोष में नेपालगंज उप महानगर पालिका की तरफ से ₹30 लाख रूपये, बांके जिला समन्वय समिति ने 30 लाख, कोहलपुर नगर पालिका ने 20 लाख और 6 गांव पालिका ने 10-10 लाख और नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघ ने ₹20 लाख सहयोग करने के निर्णय किया है। कोरोना विरुद्ध सचेतना जगाने के लिए और संक्रमण फैलने न देने के उद्देश्य से आसाम के 3 स्थानों में हेल्थ डेस्क स्थापना किया गया है। जिला के चोरपाटी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 की चौखुटे, साफेबगड़ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के एयरपोर्ट और पंचदेवल नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के बेलखेत में हेल्थ डेस्क स्थापना किए जाने की जानकारी जिला विपत पूर्व तैयारी समिति ने दी। चितवन के भरतपुर महानगरपालिका 7 में ट्रक के साइकिल को टक्कर देने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में साइकिल यात्री भरतपुर महानगरपालिका 7 के कृष्णपुर निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मी सुवेदी की मौके पर ही मौत हो गई। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय चितवन ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इटली में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के सामने एक अजीब मुश्किल खड़ी हो गई है। उनके सामने चुनौती इस बात का चुनाव करने की है कि वे किसका इलाज पहले करें और किसे छोड़ दें। इटली में हर दिन हजारों की तादाद में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह देश बीमारों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल बेड्स की कमी से जूझ रहा है। आमतौर पर जंग में इस तरह के हालात पैदा होते हैं, लेकिन इटली को शांतिकाल में इस तरह की चुनौती भरी स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। लोम्बाडिया के उत्तरी इलाके बार्गो में एक हॉस्पिटल में आईसीयू के हेड क्रिश्चियन सालारोली ने न्यूज़पेपर कोरियेरे डेला सेरा को बताया, गंभीर रेस्पिरेटरी बीमार से गुजर रहा कोई 80 से 95 साल का शख्स अगर आता है तो आप शायद इसका इलाज नहीं करेंगे। ये शायद बेहद कड़वे शब्द है, लेकिन यही हकीकत है। हम इस वक्त चमत्कार करने की कोशिशें करने की स्थिति में नहीं है। अहम बात यह है कि इटली में यह वायरस इतनी गंभीर शक्ल ले चुका है कि जीवन और मौत के फैसले लेने पड़ रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रदेश नंबर 2 के नामकरण के विषय में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी द्वारा रखे गए प्रस्ताव भी हुए अस्वीकृत। नेपाल ऐन संशोधन विधेयक 2075 को राष्ट्रीय सभा द्वारा किया गया सर्वसम्मति से पारित। दैनिक उपभोग्य वस्तुओं की सहज आपूर्ति के लिए सहूलियत दुकानें सरकार द्वारा की जाएगी संचालित। इटली में कोरोना का कहर जारी, हजारों की तादाद में वायरस के संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं सामने। इसी के साथ हिन्दी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।